أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. یہ نور ان گھروں میں ملے گا جس کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بلند کرو, اس میں اللہ کے نام کا ذکر کرو, اور اللہ کے اس گھروں میں صبح شام تسبیح کرتے رہو. رجال, ایسے مرد بھی ہے, ایسے مرد بھی ہے کہ ان کی تجارت اور ان کا خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتا اللہ کے ذکر سے. ایسے مرد بھی ہے, نماز کو قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی. وہ ڈرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر قیامت کے دن بدلا دے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ, اور اپنے فضل سے اللہ ان کو اپنا دیدار بھی کرائے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے نور کی بات سنی تھی, اللہ نور السماوات والارض. اب اس کے بعد سوال ہوتا ہے وہ نور کہاں ملے گا. نور کا تو آپ نے سن لیا, یو ہیو ہرڈ اباؤٹ نور, لیکن کہاں ملے گا نور؟ فرمایا وہ نور تم کو اللہ کے گھر میں ملے گا. کہاں ملے گا؟ مسجد. یو ول گیٹ دا نور ان دا ہاؤس آف اللہ, اللہ کے گھر میں وہ نور ملے گا. اسی لیے یہاں پر کافی بیوت, بیوت ہاؤسز. اب اس کی بہت ساری تفسیر, اس میں سے پہلی تفسیر یہ ہے جو یہاں پر حضرت جمہور علماء فرماتے ہیں کہ بیوت سے مراد اللہ کی مسجدیں ہیں, اللہ کی مسجدیں ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیوت سے مراد مسجد اقصا ہے. مسجد اقصا, یو ول گیٹ نور دے. مسجد اقصا 124,000 میسنجرز نے پوری زندگی مسجد اقصا کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے. پہلے تو قبلہ وہی تھا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ہے 16-17 منتھس آفٹر ہجرت انہوں نے اقصا کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے. آپ شاید گئے ہوں گے مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین میں, ادھر مسجد اقصا ہے, ادھر قبلہ کعبہ ہے. ظہر کی نماز میں دیر ہو گئی تھی, کسی کی خبر لینے کے لیے گئے تھے, دیر ہو گئی تو آپ مسجد نبوی نہیں پہنچ سکے, تو یہاں ظہر پڑھائی آپ نے. پہلی دو رکعت ادھر پڑھی, دوسری دو رکعت ادھر کعبہ کی طرف پڑھی. اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین, دو قبلے والی مسجد مدینہ منورہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نور ملے گا اللہ کے گھر میں, مسجدوں میں. یا پھر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ گھر ہے جس گھر میں الگ سے کمرہ ہو اور اس میں نماز کے لیے بنایا گیا ہو. کیا بھائی؟ ہاں, خاص مکان تو ہم بناتے ماشاءاللہ. But we don't make a small house for namaz, for ladies, for men, sunnat, nafal. وہ گھر ہے. एक रूम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे पेशाब पापा खड़ा न करें, पाक साफ हो, इसमें इबादत होगी, तस्बीहात हो, कुरान रख दे, कोई किताब रख दे, वहां बैठकर नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तो पूरे घर में नूर नूर ही नूर मिलेगा। फी बुयूतिन अदिनल्लाह अंतुरफा, यहां पर तुरफा का लफ्ज है, समझने की बात है। तुरफा, पहली बात तो यह है कि मस्जिद को तुरफा का माना बनाने वाले, तामीर करने वाले, बलंद करने वाले, जगह खरीदी, मस्जिद बनाई, यह है तुरफा। इस आदमी ने मस्जिद को बलंद किया, यहां पहले मस्जिद नहीं थी, इसने मस्जिद बनाई, तामीर। इसीलिए कुरान करीम में जो मस्जिद बनाता है उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं उसके ईमान की गवाही दो, वो मोमिन है। कुरान में इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाही मन आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह की मस्जिद बनाता है उसका गोया अल्लाह रसूल और आखिर पर ईमान है, ये ईमान वाला है। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, इज़ा रायतुमुर रजुल यअतादुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान, जब कोई शख्स मस्जिद को देखभाल करता है, लुक आफ्टर द मस्जिद, हमारे अयूब भाई है, हमारे ट्रस्टीज है, कितनी मस्जिद के लोग, कभी हुवर की जरूरत है, हुवर की, हमारे याकूब भाई है, नूर मोहम्मद है, हमारे कितने लोग, अब्दुल भाई देखो कितने लोग ये टाउल को धोते हैं, किसके लिए, किसके लिए टाउल धोते हैं ये लोग, वजू करने वाले उनके लिए टाउल। ये ऐसी चीजें हमें पता नहीं है कि इसका कितना सवाब है, ये रोजाना टाउल ले जाते हैं, हमारे जितने भी हमारे मस्जिद के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, जितने भी हमारे साथी है, सबका नाम आपको पता है, वो ले जाते हैं रोजाना, जो टाउल धोया पूछा गया उसको ले जाकर धोकर वापस रखते हैं, किसके लिए, ये अल्लाह को राजी करने के लिए कि लोग वजू करेंगे, अपने चेहरे को वाइप करेंगे, लोग हुवर करते मस्जिद में, क्यों, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, लोग वजू खानों को साफ कर लेते हैं, क्यों, शो ऑफ करने के नहीं, अल्लाह का घर है, साफ सफाई, मेरे घर में साफ सफाई हम करते हैं, अल्लाह के घर में क्यों ना करें, बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही हदीस है, इदा रायतुम रजुलु यअतादुल मस्जिद, जो मस्जिद की खिदमत करता है, तुम सब के सब उसके ईमान की फशहदु लहू बिल ईमान, उसके ईमान की गवाही दो, ये मोमिन बंदा है, उसकी मौत ईमान पर आएगी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद थी, ये पाम ट्रीज के पिलर से बनाई थी, कच्ची मस्जिद थी, किचर से, किसर किचर की ब्रिक बनाते हैं ना ऐसे, और उससे वो दीवार बनाई थी, और ऊपर छत थी, कैसी थी वो छत थी, बिल्कुल पाम ट्रीज के ब्रांच की थी, कि जब बारिश होती थी तो अंदर में भी पानी गिरता था, कुत्ते भी आते जाते थे, कच्ची थी, दीवार इतनी बड़ी नहीं थी, कच्ची मस्जिद थी, जो आज आप मस्जिद नबवी में शुरू हिस्सा जो देखते हैं ना, ये कच्ची थी, इसीलिए 21वीं रात में बारिश हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया, क्योंकि आपने सजदा किया ना तो कीचर यहां लगा, कीचर पानी की वजह से, फरमाया ये रात लैलतुल कदर की थी, बारिश हुई थी, अल्लाह ने फरमाया यही रात लैलतुल कदर की थी, तो कच्ची। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो टाइम नहीं मिला कि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद लोग मुर्तद होने लगे, कोई जकात का इनकार कर, कोई ईमान का इनकार, कोई क्या और कोई क्या, तो उनकी फिक्र में लग गए, तो उनको टाइम नहीं मिला मस्जिद को रेनोवेट करने का। हजरत उमर रजी अल्लाह का जमाना आया, उन्होंने थोड़ा और एक्सटेंशन यानी थोड़ा सा रेनोवेट किया अच्छी तरह, लेकिन उनको भी इतना टाइम नहीं मिला, हजरत, चूंकि उनके जमाने में इस्लाम बहुत फैल चुका था तो सबकी फिक्र करनी थी, हजरत उमर रजी अल्लाह तो दूर दूर तक, शाम तक, फलस्तीन तक, जरूसलम तक, जॉर्डन तक ईमान फैल चुका था हजरत उमर के जमाने में, इसीलिए तो वो फतह करने के लिए गए थे, ही वेंट टू कंकर द फलस्तीन जरूसलम. आज भी वो मस्जिद वहां मौजूद है, मस्जिद उमर, जहां आपने नमाज पढ़ी. मैं तो कहता हूं आप लोग जो नहीं गए जाओ, ईमान तुम्हारा ताजा हो जाएगा. ये वो जगह जहां 1,24,000 अंबिया ने नमाज पढ़ी है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में 2 रकात पढ़ाई है. बरकत वाली जगह, आपको बहुत सुकून लगता है मस्जिद में, वो अलग बात है, जालिम जुल्म करते हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए वहां. ये दूसरा हरम है. काबतुल्ला बना, उसके 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा बना है. जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है. अल्लाह हमें ले जाए, वहां का नूर अल्लाह नसीब फरमाए. अभी तो हम ही जाकर, अभी आए ना, ट्यूजडे को आए हम, बहुत नूर है वहां, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बैठे रहे, बहुत अच्छी जगह है. और अंबिया अलैहिस्सलाम जहां नमाज पढ़े, और इमाम उल अंबिया 2 रकात सारे नबियों को पढ़ाए, जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां नमाज पढ़े, उससे बढ़कर क्या जगह हो सकती है. वहां मेहराब ज़करिया है, मेहराब हजरत मरियम है, क्या क्या जगह है वहां. नीचे जिन्नातों ने मस्जिद बनाई, वो पत्थर वाली मस्जिद अभी तक मौजूद है सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में. क्या क्या दुआएं दाऊद अलैहिस्सलाम की वहां सारे. और वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र है, हेब्रोन में करीब है, वहां से 1 घंटे का रास्ता है. हजरत इसहाक की कब्र है, हजरत सारा, हजरत इब्राहिम की बीवी, जिनसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जद भी अमजद हजरत इस्माइल अलैहि सलाम पैदा हुए हजरत सारा से, और इसहाक अलैहि सलाम पैदा हुए, इसहाक अलैहि सलाम कब्र वही है, और इसहाक अलैहि सलाम की नस्ल 73,000 अंबिया अलैहि सलाम आए. उनकी बीवी की कब्र नेक्स्ट टू इसहाक अलैहि सलाम, रफका नाम है उनके, वही कब्र है. उसके पीछे याकूब अलैहि सलाम की कब्र है, उसके नीचे यूसुफ अलैहि सलाम की कब्र है. कितनी बरकत वाली जगह है, और भी कितने पूरा खानदान वहां दफन होगा नीचे. ऐसी जगह जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है. ये वो जगह मरियम अलैहिस्सलाम का मस्जिद अक्सा के नीचे वो रूम है, जहां हमने देखा है, वहीं पर तो जन्नत से फ्रूट आया था. कालत अन्ना लकी हादा, पूछा था ना हजरत ज़करिया से, ये कदर से आया, पर मैं हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से आया है, मरियम अलैहिस्सलाम ने बताया था. और वही जो मेहराब ज़करिया, बिल्कुल आप मस्जिद में जाते हैं लेफ्ट साइड पर है, ये वो जगह है जहां पर अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, या ज़करिया इन्ना नुबशिरुका बेगुलाम इस्मुहु यहया. वहां पर नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के बाद बशारत दी कि अल्लाह आपको एक बेटा देगा जिसका नाम अल्लाह यहया रखता है. क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम को देखा, बेमौसम फ्रूट है, कोई सीजन नहीं है, तो हजरत ज़करिया साहब ने कहा हम भी तो बेमौसम है, मेरी उम्र भी 100 साल से ऊपर हो गई, बीवी 90-95 ईयर्स की है, हमारा कोई मौसम नहीं बच्चा लाने का, लेकिन तू बेमौसम मरियम को फ्रूट दे सकता है, बेमौसम बच्चा भी तो दे सकता है. दुआ कबूल हो गई और उनको इस साल में 100 साल की उम्र में बच्चा मिला. ये वो जगह है वहां मेहराब ज़करिया. इंशाल्लाह जाओ कभी, कभी हमारे साथ चलो, हमको हम आपको बताएंगे क्या क्या जगह है बरकत वाले. कुब्बतुस सखरा है वहां, जहां से अल्लाह के नबी ऊपर गए मेराज में, अल्लाह हम सबको ले जाए. तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं उससे मुराद मस्जिद अक्सा है. फी बुयूतिन, बाजों ने कहा सारी मस्जिद है, बाजों ने कहा वो घर है जिस घर में लोग नमाज पढ़ते हैं तो नूर फूटता है, पूरे घर में नूर आता है, झगड़े खत्म होते हैं, बरकतें आती है. तो ईमान की गवाही दो, तो मैं कह रहा था उस्मान रजी अल्लाह ताला ने उनके जमाने में मस्जिद का एक्सटेंशन किया. और इकबाल भाई ने इंडिया से सागवान की लकड़ी मंगवाई हजरत उस्मान ने. सागवान जो है ना बहुत मजबूत लकड़ी है, बहुत महंगी भी है और बहुत देर तक रहती है, बिगड़ती नहीं है. हमारे पिलर तो गिर भी सकते हैं, वो बहुत मजबूत है सागवान की, हिंदुस्तान से मंगवाई. और उसके जो जो बिल्डर्स है, अच्छे अच्छे बिल्डर्स मंगवाए. और फिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मस्जिद नबी में जाएंगे ना तो वहां एक जगह पर हर पिलर पर लिखा हुआ है हादा हादा मस्जिद नबी, हादा मस्जिद नबी, ऐसा भी लिखा ऐसा भी. ये पूरा हिस्सा हजरत उस्मान ने बनाया था, आज भी लिखा हुआ है सारे पिलर के ऊपर, ऊपर लिखा हुआ है हजरत उस्मान ने बनाया था, वही असली मस्जिद. बाद में फिर इन लोगों ने, बादशाहों ने फिर और बनाई, लेकिन हजरत उस्मान, तो लोगों ने एतराज किया ऐसी मस्जिद क्यों बनाते, क्या जरूरत थी, अल्लाह के नबी ने नहीं बनाया, हजरत अबूबकर सिद्दीक ने, तुमने क्यों बनाया. तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने फरमाया देखो मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, बादशाह हूं, तीसरे खलीफा है ना, फरमाया मैंने एक पैसा वेजस का बैतुल माल से नहीं लिया 12 साल में। जब कभी जुमा पढ़ने जाते थे पहले एक गुलाम को आजाद करते थे, 12 साल तक हर जुमा को गुलाम फ्री किया, स्लेव फ्री किया। कितना सवाब, एक एक गुलाम बेचने का और उसको आजाद करने का कितना सवाब है। आदमी एक गुलाम आजाद करे जहन्नम हराम है उस पर। यहां 12 साल तक गुलाम आजाद किया, ही फ्रीड फॉर 12 ईयर्स द स्लेव्स। और फरमाया मैंने एक पैसा, हां लोगों के काम के लिए मैंने बैतुल माल से लिया, लेकिन मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए मैंने एक पैसा मस्जिद बैतुल माल में से नहीं लिया। फरमा मैं अपने माल में से ये मस्जिद बनाता हूं, तुम लोग, तुम्हारा घर बिगड़ जाता है तो तुम उसको रेनोवेट करते हो, उसका पेंट करते हो, उसका ये करते हो। अल्लाह का घर बिगड़ जाए तो तुम उसको बनाने की फिक्र नहीं करते। फिर उसके बाद हजरत उस्मान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई, मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो आदमी अल्लाह का घर बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? यह है अंतुरफा की एक तफसीर है जो हजरत उस्मान बयान फरमाए। और तुरफा की दूसरी तफसीर, मस्जिद को पाकीजा रखो, साफ रखो, क्लीन रखो, ये भी तुरफा में दाखिल है। सारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इसीलिए हदीस में इब्ने माजा में है, छोटे बच्चों को न लाओ, डोंट ब्रिंग ए स्मॉल चिल्ड्रन टू द मस्जिद, क्योंकि उनको पता नहीं पाकी नापाकी का, पाकी नापाकी का पता नहीं है। हाँ सही हदीस और फिका का मसला है। 7 साल का हो जाए तब लाओ, ये थोड़ा समझदार बन गया, अब उनको नमाज वगैरह सिखाओ। 7 साल से अंदर का अल्लाह के नबी ने फरमाया कभी पता नहीं, मुश्किल। पेशाब कर दे या कोई गंदगी कर दे या कोई तूफान करे या कोई मस्ती करे या कुछ भी करे, लेकिन ज्यादातर नापाकी से मस्जिद की हिफाजत होनी चाहिए। और नंबर 2, जाहिरी गंदगी से पाक रखो, बातिनी गंदगी क्या है? काफिर मुशरिकीन जो गैरों की इबादत करते हैं उनको इबादत करने का मौका ना दो, यानी उनको अंदर में रहने का। लेकिन अगर वो आए देखने की नियत से, मसला सुनना फिका का, देखने की नियत से अगर कोई नॉन मुस्लिम आए एंड दे वांट टू सी मस्जिद, लेट देम कम, आने दो, बताओ उनको हम क्या करते हैं। देखो कितने नॉन मुस्लिम आते हैं, यहां खड़े होते हैं और हमारी नमाज को देखते, हो सकता है अल्लाह किसी को हिदायत दे दे। कुरान को टच करना जायज नहीं है बगैर वजू के, लेकिन नॉन मुस्लिम समझने के लिए दे दो, हो सकता अल्लाह उसको हिदायत दे दे, हो सकता अल्लाह उसको हिदायत दे दे। इसीलिए नजरान के क्रिश्चियंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए देखने के लिए, मस्जिद नबी को, नबी को, साहबा को देखने के लिए आए, और ओवरनाइट अल्लाह के नबी ने उनको मस्जिद में रखा। ओवरनाइट कहां रखा? मस्जिद में रखा। वो सुबह उठ करके वो इबादत कर रहे हैं अपने जीसस जो भी हो क्रिश्चियन की इबादत कर रहे थे, सहाबा दौड़ते दौड़ते गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये वो तो मस्जिद में इबादत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया छोड़ दो, इनका अकीदा गंदा है, बिलीफ गंदा है, छोड़ दो, ये तो चले जाएंगे, यहां तो रहने वाले नहीं। तो फिर इसीलिए इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज में लिखा है कि वो खुतबा दे रहे थे जुमा का, कहां? बैतुल्लाह में। कहां पर? मस्जिद हराम में खुतबा दे रहे। एक ईसाई खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर कहा, इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि फुला ईसाई, फुला आदमी मेरे पैसे नहीं दे रहा है, मालूम होता है नॉन मुस्लिम आते हैं। इसीलिए दूसरे 3 इमाम तो मना करते हैं गैर मुस्लिम के लिए वहां आने का, लेकिन अहनाब में से इमाम आजम इमाम अबू हनीफा और साहिबैन फरमाते हैं अगर वो आते हैं वहां देखने के लिए, आने दो, हो सकता है लोगों के क्यू देखकर, लोगों का हुजूम देखकर मुसलमान हो जाए। समझ में आई बात? ये बात। लेकिन अगर कोई लड़ाई की नियत से आए, फसाद की नियत से आए, तो डिफेंस करो, उनको आने न दो, या और कोई बुरी नियत हो तो आने न दो, लेकिन उनकी नियत सही है, आकर के देखें वगैरह, ताकि वो अपने ईमान लाना चाहते हैं लेकिन पहले वो इस्लाम देखना चाहते हैं। कितने ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने जुमा का हुजूम और वहां मस्जिद हराम में पब्लिक को देखकर ही मान लिया है, सिर्फ देखकर ही मान ले, एक साथ सब सजदे में है चारों तरफ हरम के। कितने लोग हैं, अमेरिकन चार या पांच गोरे लोग गए थे, सब मुसलमान हो गए। लेकिन जाहिरी बातिनी गंदगी से मुराद क्या है, छोटे बच्चे हैं या कोई फसाद की नीयत से आए तो उनको आने न दिया जाए। फरमाते हैं यहां मस्जिद की तहारत और सफाई जरूरी है, हर किस्म की गलाजत से नापाकी से मस्जिद की हिफाजत की जाए। मस्जिद में वही काम होने चाहिए जो काम जायज है। लेकिन बाज मरतबा मस्जिद में इतना नक्शो निगार करते हैं कि नमाज में नमाजी का ध्यान कहा जाता है, ओ सब नक्शो निगार के ऊपर। अल्लाह के नबी साहब फरमाया किबले की दीवार पर इतने नक्श निगार, नक्श निगार करके मना इतने ज्यादा डिजाइन न बनाओ। क्यों? फरमाया कि लतुख जखरिफु नहा कमा जखरफतिल यहूदी व नसारा, यहूद और नसारा अपने सिनागोग में और अपने चर्च में जो इस तरह बनाते हैं तुम इस तरह न बनाओ, वरना नमाज में अल्लाह के सामने ध्यान नहीं रहेगा, किधर चला जाएगा। इसीलिए ऐसे मुसल्ले भी ना खरीदो जिस पर डिजाइन हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा पहना और उस पर डिजाइन, बल्कि सामने पर्दा था, फरमाया इसको हटाओ, मेरी नमाज में ध्यान इधर चला गया अल्लाह के बजाय। इसलिए इससे बचना चाहिए। साफ साफ मना कर दिया कि कयामत की निशानियों में से है कि लोग ऐसी मस्जिदें बनाएंगे जो यहूद और नसारा के सिनागोग और चर्च की तरफ बहुत खूबसूरत डिजाइन्स है, लेकिन अंदर में नमाज पढ़ने वाले कोई नहीं है। देखो ना कितनी मस्जिद है, हमारी कुबाई को देख लो ना यार, इतनी खूबसूरत मस्जिद है लेकिन नमाजी कितने होते हैं बताओ, कितने नमाजी आते हैं। ऐसी मस्जिदें बड़ी बड़ी बनी है, लोगों ने बनाई है कि अंदर जाओ तो ऐसा लगता है जैसे महल में बैठे आप। हाँ मसला ये भी है, मालदार लोग आ रहे हैं मस्जिद में तो उनके लिए अच्छा माइक ताकि उनका दिल लगे कुरान सुनने में, अच्छा घर अल्लाह का होना चाहिए। लेकिन ऐसी भी नहीं डिजाइन से जिससे इंसान का दिमाग घूम जाए, नमाज में न रहे, उससे भी मना फरमाया है। मस्जिद के आदाब में से फरमाया मस्जिद में दाखिल हो तो आहिस्ता से सलाम करें और दुरूद शरीफ पढ़े, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और उसके बाद दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा फ्तहली अबवाबा रहमती, और दाना पैर रखे और नियत करे नवैतुल एतिकाफ मादुमतु फिल मस्जिद, जब तक मैं मस्जिद में रहूं मैं एतिकाफ में हूं। समझ में बात आ रही है, मस्जिद में दाखिल हो। सबसे ज्यादा आपको मैं बताऊं गालिबन 9 हिजरी में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लैंप नहीं था, कोई कैंडल या कुछ भी नहीं। सबसे पहले तमीम दारी रजी अल्लाह ताला ने, तमीम दारी सबसे पहले 9 हिजरी में तहज्जुद के टाइम उन्होंने मस्जिद में कैंडल जलाया रोशनी, सबसे पहले 9 हिजरी में। अल्लाह के नबी साहब इंतकाल 1 साल पहले, वरना मस्जिद में अंधेरा रहता था, ऐसी रोशनी नहीं थी। इसलिए उलमा फरमाते हैं जितनी जरूरत इतनी रोशनी ऑन करो, पीछे सब खाली है, पूरी मस्जिद की रोशनी ऑन मत करो, उन सब तो कोई है भी नहीं पीछे, एक सब दो सब ठीक है, आगे का ऑन कर दिया और डे टाइम सब कुछ रोशनी आ रही है बाहर से तो भी रोशनी ऑन ना करो। इसलिए कि मस्जिद के एक एक पैसा वक्फ है, कीमती है। इसीलिए वो इतने महंगे महंगे ऊंट खरीदते थे अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, इतनी महंगी महंगी तलवार खरीदते थे, क्यों इतना पैसा नहीं कैंडल जलाने का। फरमाते हैं वो अपनी जरूरत की चीजों को इस्तेमाल करते थे, इतनी जरूरत यहां मस्जिद में नहीं थी जितनी के वो जरूरत थी उनको उस जमाने में इस्लाम फैलाने की। बात मेरी समझ आ रही है? अल्लाह के घर के बारे में फरमाया इदा दखला अहदुकुम المسجد, मस्जिद में दाखिल हो फलयरका रकअतैन, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, क़ब्ल अन यजलिस, बैठने से पहले 2 रकअत वेलकम सलाम अल्लाह से कर लो, तहियतुल मस्जिद, तहियत माने सलाम, मस्जिद का सलाम, हदीस में आता है ना, जब तुम बाजार में नमाज पढ़ो एक नमाज का सवाब, एंड इफ यू परफॉर्म योर सलाह इन मस्जिद 25 to 27 नमाज का सवाब, और अगर आपने घर पर वुजू किया, घर पर वुजू किया और नमाज की नियत से मस्जिद में आ रहे हैं, तो हर हर कदम के ऊपर एक गुना माफ, एक दर्जा जन्नत में बरक, एक गुना माफ एक दर्जा बरक, बुखारी शरीफ हदीस, एक दर्जा माफ एक दर्जा, एक गुना माफ एक दर्जा बुलंद। आप वहां से यहां तो कितने कदम होते हैं, जब मस्जिद में आ गए फरमाया जितनी देर तुम बैठो अगरचे नमाज शुरू नहीं हुई, तुम नमाज के अंदर में हो। नमाज के अंदर में आप बैठे हैं, बस कुरान पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जो भी दुआ करे कबूल हो जाएगी, इसलिए कि आप नमाज में दुआ कर रहे हैं। हम लोग दुआ नहीं मानते। हदीस में तिर्मिज़ी शरीफ में है, अजान और फर्ज नमाज के दरमियान में एक दुआ जरूर कबूल होती है, और फर्ज नमाज के फौरन बाद भी दुआ कबूल होती है, दोनों रिवायत है। अजान और फर्ज नमाज के दरमियान का वक्त बड़ा कीमती होता है, उसमें दुआएं करो अपने लिए, औलाद के लिए, हिदायत के लिए, उम्मत के लिए दुआ करो, अपने आखिरत के लिए, कब्र के लिए, आखिरत के लिए दुआ करो। फरमाया जब मस्जिद में आ जाओ, आप बैठ गए, तो जितनी देर आप नमाज का इंतजार करेंगे आप नमाज के अंदर में हैं, और फिर नमाज के बाद आप जाएं, जितनी देर आप बैठे रहेंगे मस्जिद में नमाज से पहले और नमाज के बाद, हर सेकंड फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआ करता है, अल्लाहुम्मा फिरलहु, अल्लाहुम्मा रहमहु। ये सही हदीस है, इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं हादा हदीस हसनुन सही, अल्लाह फगीब हिम, ए अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, ए अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा, अल्लाह इसके दर्जात को बुलंद फरमा। तो मस्जिद के आदाब में से ये भी है। तो मेरी बात सुनने आ रहे ना कि नहीं आ रही है, ये भी सीखने की चीज है ना, और रोजाना आते हैं। तो ये है, इदा अहद तुम में से कोई दखल अहदुकुम फिल मस्जिद फलयरका रकअतैन। और अगर एक मसला और सुन लो, आप आए अभी 5 मिनट बाकी है, सुन्नत पढ़नी है, अब 2 रकात तहियत मस्जिद का टाइम नहीं है, तो मसला सुन लो, उसी सुन्नत में तहियतुल मस्जिद की भी नियत कर लो, आपको तहियतुल मस्जिद का भी सवाब, सुन्नत भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मस्जिद में आ गए और बैठ गए, फौरन पता चला मेरी 2 रकात, तो फौरन खड़े हो जाओ, लेकिन अब देर तक बाकी रहे तो वो तुम्हारा वेलकम खत्म। समझ में आ रही बात, वो तहियतुल मस्जिद का टाइम क्या हो गया, खत्म। याद रखो इसका बड़ा सवाब है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए ना, मेराज में फरमाया बिलाल जब वापस आए तो तू क्या नेकी करता है, फरमाया क्यों, मैं बिल्कुल नॉर्मल जो करना है वही करता हूं। फरमाया मैं जब जन्नत में दाखिल हो रहा था तो मेरे आगे किसी की चलने की आवाज आ रही थी, जैसे आप चलते हैं सूस के सर कैसी आवाज आती है, तो मैंने जिब्राइल से पूछा ये किसकी आवाज है, फरमाया बिलाल मदीने में जमीन पर चलता है उसकी आवाज जन्नत में आती है। तो हजरत बिलाल से पूछा क्या अमल करता है, फरमाया जब कभी मैं वुजू करके मस्जिद में दाखिल होता हूं मैं 2 रकात पढ़ता हूं पाबंदी से। मेरी बात समझ में आ रही है, तो अल्लाह के घर में ये अल्लाह के घर के आदाब है, हमें सीखने चाहिए। और ये भी आदाब मस्जिद में से दाखिल है कि मस्जिद में बेओशिरा ना करें, सेलिंग एंड डीलिंग ना करें। हाँ मोतकिबीन के लिए इजाजत है, वो फोन से अगर कोई बिजनेस, क्योंकि उनकी बिजनेस हो रही मस्जिद में बैठा है और कुछ, तो फोन से अगर कुछ कहना चाहे या किसी से कह दे भाई इतने पैसे में, पैसे का यहां लेन देन नहीं, चीजों का लेन देन नहीं, सिर्फ वर्बली बात कर सकता है क्योंकि वो एहतिकाब में है, वरना किसी को इजाजत नहीं है मस्जिद में खरीदो फरोख्त करने की। फरमाया अगर तुम किसी को देखो कि वो मस्जिद में बिजनेस कर रहा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम का फरमान तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, तुम उसको बद्दुआ दो, ला अरबहल्लाहु तिजारत, अल्लाह तेरी बिजनेस में बिल्कुल नफा ना दे, बरकत ना दे। मालूम होता है मस्जिद बेओशिरा के लिए नहीं है, खरीदो फरोख्त के लिए नहीं है, अगर है बाहर चले जाओ, बाहर जाकर के बात करो। और एक बात, मस्जिद के बाहर अगर कोई चीज गुम हो जाए किसी की, तो मस्जिद में उसका ऐलान ना करो माइकों में कि भाई फुला की चीज, फुला की गाड़ी को ले गया, फुला की चाबी को ले गया, है ना, مسجد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, یوں بد دعا کرو تم لوگ اگر کوئی مسجد میں اعلان کرے, اناؤنسمنٹ کرے کہ سو اینڈ سو پرسنز تھنگز لاسٹ, تو آپ فوراً اس کو یوں نہ کہو آمین اللہ حسن کر دے, نہیں, لا رد اللہ علیکا فإن المسجد لا تبنى هذا, یوں بد دعا کرو اللہ تیری چیز کو واپس ہی نہ کرے, اس لیے کہ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی. مسجد تو ذکر اللہ کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے. دیکھو اللہ کے نبی کتنے رحیم کریم ہیں, رؤوف الرحیم ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر کا ادب نہیں کر رہے آپ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں ہے, ایک دیہاتی آدمی آیا. دیہاتی لوگ ہوتے اس زمانے میں اتنے زیادہ نالجبل نہیں ہوتے تھے, اور مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے. بخاری شریف کی حدیث, کونے میں بیٹھ گیا تو صحابہ دورے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا جزرا ولا شتما, don't swear him, don't even shout him, leave him, leave him, leave him, leave, let him finish. محدثین فرمایا کہ کیوں مسجد کو ناپاک کر رہا ہے اس کو؟ فرمایا اگر اس کو ہٹائیں گے وہاں سے تو آدھا آدھا کئی کئی قطرے گرتے گرتے بہت ساری جگہ ناپاک ہو جائے گی, اس سے بہتر ہے کہ ایک جگہ ناپاک ہو جائے, صاف کرنا آسان ہے. اینڈ سیکنڈ تفسیر کیوں, فرمایا انسان جب آدھا پیشاب کرے اور آدھا روک دے تو خطرہ ہے بیمار ہو جائے, اللہ کے نے فرمایا اس کو پورا ہی کر لینے دو تاکہ یہ بیمار نہ ہو. جب پیشاب کر لیا, اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے آج اگر ہوتا تو خون ریزی بھی ہو جائے گی. وہ ہمارے ایک ساتھ تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی, وہ ایک بچے نے یہاں پیشاب کر دیا یہاں سامنے وہ پلر کے پاس, اس کو اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا, میں وہیں تھا, میں بعد میں آیا, اس وقت انہوں بات ایسی, وہ آدمی بچے کو لے کر چلا گیا, خیر ہم نے بعد میں صاف کر لیا یہاں, وہ چلا, اس نے کہا اب کے بعد میں کبھی مسجد میں نہیں آؤں گا. دیکھو اللہ کے نبی کی مسجد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ ہے, ان سے بڑھ کر متقی کون ہو سکتے ہیں, ان سے بڑھ کر اولیاء کون ہو سکتے ہیں. فرمایا نہیں 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 رہنے دو رہنے دو. اور پھر جب پیشاب پورا ہو گیا, اللہ کے نبی سے فرمایا وہ جگہ کھود ڈالو, جو کچی تھی نا کھود ڈالو اور اس کو ڈگ کر کے باہر پھینک دو اور دوسری پاک مٹی یہاں ڈال دو. ڈول سے, یہاں ایک روایت میں ہے, ڈول سے پانی ڈال کر ڈھولو, جیسے آج کل کارپیٹ ہم ڈھوتے ہیں. پھر اس کو بلایا, فرمایا اللہ کا گھر ناپاکی گندگی کے لیے نہیں ہے, اللہ کا گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہے, نماز کے لیے ہے, دوسری بار ایسا نہ کرنا. بعض محدثین نے آگے لکھا ہے اللہ کے نبی نے اس کو نرمی سے سمجھایا, ایسی بات اتر گئی جب یہ واپس گیا اپنے گاؤں میں, تو ابھی تو پہاڑی سے اتر رہا تھا, اعلان کر رہا ہے لوگوں کو, گاؤں والوں گاؤں والوں میں ایک ایسے آدمی کو مل کر آیا ہوں کہ میں نے اتنا گندا کام کیا پھر بھی مجھے ولا جزر ولا شتما, مجھے شاؤٹ نہیں کیا, مجھے گالی نہیں دی, چلو چلو سب کے سب ان کے پاس ہم مسلمان ہو جاتے ہیں, سب آ کر کے مسلمان ہو گئے. اخلاق تو یہ ہیں, لیکن پھر بھی گندگی سے حتی امکان کوشش کریں کہ ایسے بچوں کو یا ایسے پاگلوں کو نہ لایا جائے جو مسجد کی بے حرمتی کرے, مسجد کا کوئی رسپیکٹ آپ کو پتا نہیں ہے, مسجد کے بڑے آداب ہیں. ہاں تو ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں اعلان نہ کیا جائے گم شدہ چیز کی, لاسٹنگ سے, اور ایک ہے مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کرے, خلاف ادب ہے. ہمارے استاد شیخ الفقہ بل ادب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب دیکھتے تھے مسجد میں کوئی دنیا کی بات, ہاں کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی کام کی بات ٹھیک ہے, لیکن کوئی دنیا کی بیٹھ کے آرام سے ایران توران کی باتیں کر رہا ہے, فلاں 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 ہو گیا بزنس کا یہ کا, اس کا ہاتھ پکڑتے تھے, اس کو باہر لے جاتے تھے, فرمایا بیٹے یہاں بیٹھ کر کے بات کرو, مسجد بات کے لیے نہیں ہے. چونکہ حدیث میں ہے جب آدمی دنیا کی بات کرتا ہے تو فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں نہیں سنتا, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یا صدیق اللہ اسکت, اے اللہ کے دوست خاموش رہ, پھر بھی باتیں کرتا رہتا ہے تو اللہ کے نبی صاحب فرمایا, پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے یا صدیق اللہ اللہ's friend, the friends of Allah, اسکت خاموش رہ, پھر بھی بات کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا عدو اللہ, اے اللہ کا دشمن خاموش رہ. بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو مسجد میں دنیا کی بات نہ کریں, ضرورت کی بات جو ہے, کام کی بات, دین کی بات, ایسی باتیں ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں فجر میں ہوتا ہے بہت ساری بات جو کام کی بات ہے، دین کی بات ہے، لوگوں کو دعوت دینے کی بات ہے، اس طرح آپس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی ایسی بات ہے کام کی، لیکن بیٹھ گئے اب بیٹھ کر آدھا گھنٹہ دنیا کی بات کرتے رہے، ایسی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کا ادب بہت ضروری ہے۔ اگر بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دو آدمی کو دیکھا تو ایک صحابی کو ایسے بخاری شریف میں کنکر پھینکا، یعنی بات بھی نہیں کی، کنکر لیا، کچی زمین تھی نا مسجد، ایسا کنکر لیا ایسا پھینکا، انہوں نے دیکھا ادھر امیر المومنین تھے حضرت عمر، تو کنکر پھینکا، بلایا ان دونوں کو بلاؤ میرے پاس۔ وہ دونوں کو بلایا گیا، پوچھا تم لوگ کہاں سے ہو؟ کہا ہم طائف سے۔ کہا اچھا ہوا تم طائف سے ہیں، اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے ہیں تو یہ ڈنڈا دیکھ مسجد میں بات کرتے تو ایسا مارتا تمہیں کہ دوبارہ بات ہی نہ کرتے۔ یہ چیز ہے بہت امپورٹنس، ہم انڈرسٹینڈنگ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا ہمارے اندر ادب نہیں ہوتا ہے، بہت ضروری ہے۔ دوسرا بات، خاص جگہ بیٹھنے پر جھگڑا نہ کرے، نہیں یہ میری جگہ یہی بیٹھوں گا، نہیں ایسا نہیں۔ وہ سارے لوگ پہلے زمانے میں وہ رومال رکھ دیتے تھے، یہاں میری جگہ ہے، حالانکہ مسجد میں جو پہلے آیا اس کی جگہ ہے، جو پہلا آیا چاہے تم کو بعد میں جگہ ملے، ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چونکہ رمضان میں حفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے رکھا تھا کہ وہ قرآن سنیں تو لوگ اس کی جگہ ہی بیٹھ جاتے ہیں، تو ضرورت کی وجہ سے ہیں کہ پیچھے بھی وہ ان کو تراوی سنانا ہے تو پیچھے کہاں کھڑا رہے گا، اس لیے وہ غلطی بھی نکالنا ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی اپنی جگہ باندھ دی ہے، میری جگہ یہاں سے کوئی ہٹے نہیں، یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور حدیث میں فرمایا ورفع اصواتکم، ابن ماجہ کی، اپنی آوازیں بلند نہ کرو مسجد میں، باتیں کر کے جو دور سے، عام طور پر ہوتا ہے نکاح کے بعد یا کبھی پروگرام کے بعد بہت ہوتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیا کرے انسان ہے، کہتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب جمعہ کا دن ہو یا لوگ بیٹھ چکے، بعض نماز مسجد سے مصلی زیادہ ہوتے ہیں خاص کو تو جمعہ میں، فرمایا تم کود کود کر آگے نہ آؤ، لوگوں کی گردنوں پر کود کر آگے نہ آؤ، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ کیا ہے، لوگ جمعہ میں دیر سے آتے ہیں، خطبہ بھی چالو ہے، پھر کودتے کودتے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی کود کر جاتا ہے لوگوں کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت میں اس کو پل صراط پر سلایا جائے گا، لوگ اس کو کود کر جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسجد کے آداب بہت ہے، بہت ہے، یہ بھی مسجد کی آباد میں آداب میں سے ہیں کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے، do not cross the person who is reading نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث مسلم شریف کی، اگر تم کو پتا چل جائیں کہ ایک تو ایسے گزرنا، یہ گزرنا نہیں ہے، ایسے کراس میں یہاں نماز پر ایسے گزرنا، جیسے یہاں نماز پر میں آگے سے گئے نو پرابلم، لیکن ایسے گیا یہ مطلب ہے فقہ کا۔ فرمایا اگر اس کو پتا چل جائے گزرنے والے کو کہ گزرنے کا کیا گناہ ہے تو 40 ایئرس تک وہ ایک جگہ میں بیٹھا رہے، 40 ایئرس، اندازہ کرو کتنا بڑا گناہ ہوگا نمازی کے آگے سے گزرنے کا۔ ایک لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارے آگے سے گزر رہا ہے ذرا اشارہ کر دو، لیکن بعض لوگ تو مار دیتے ہیں ایسے، پھر بھی نہیں مانتے پھر مار دیتے ہیں، ایسا بھی، یہ بھی عمل کثیر ہے، اشارہ کر تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے، اشارہ بات، یا پھر ذرا آواز الحمدللہ تھوڑا بلند کر دو تاکہ اس کو پتا چلے کس میں ہے۔ حرم شریف میں ایسا ہوتا ہے، بغیر ضرورت کے گزرتا ہے، بغیر ضرورت کے گزرتا ہے، بغیر ضرورت، ہاں اگر طواف کر تو ٹھیک ہے، لیکن اور جگہ میں بغیر ضرورت کے گزرتے، کتنا گناہ، ہم جا رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے گناہ لے کر آتے ہیں، 40 سال کا گناہ، ایک سمجھ میں بات آ رہی ہے نا، اگر تم 10 منٹ زیادہ بیٹھو تو کیا ہوگا، ثواب ملے گا لیکن 40 سال کا گناہ ہوگا تمہیں۔ مسجد کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کا ذکر خوب کیا جائے مسجد میں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مررتم بریاض، ختم کرتا ہوں ایک ہی آیت پر، بہت ٹائم لگ گیا، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فرمایا جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو تم گھاس کھا لو۔ اب اس میں صحابہ نے پوچھا کہ وہ فرتعوا کیا ہے، فرمایا کہ جنت کا باغ مسجد ہے، کیا فرمایا، جنت کا باغ مسجد ہے، اور اس میں گھاس کھانے کا مطلب مسجد میں ذکر اللہ ہے، जिक्र की मजलिस है, तफसीर की मजलिस है, हदीस की मजलिस है, अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता है, तो वहां पर तुम बैठकर थोड़ा घास खा लो, यानी जन्नत का फ्रूट खा लो। इसका यह मतलब नहीं कि अभी अभी फ्रूट मिल गया अंदर में, यानी कयामत में तुम्हें ये जन्नत का बाग दिया जाएगा और उसके अंदर से तुम खाएंगे। तो जो आदमी मस्जिद में बैठकर, मस्जिद में जन्नत के, यानी मस्जिद में बैठना है, जन्नत में बैठना है और उसमें फर्त ग्रास क्या है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह इखलास के साथ कहेगा, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में फलदार दरख्त लगा देंगे मस्जिद में। तो ये आपके सामने ये आयत हदीस मैंने बयान कर दी। अब आगे जो है एक मुख्तसर, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउ, ये असल है। ऐसे लोग भी है, ऐसे लोग भी दुनिया में है कि वो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन नमाज का वक्त आए तो सीधे अल्लाह की तरफ। ये इसकी तारीफ यहां कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने देखा मदीना मुनव्वरा में जब अजान हो गई, लोग चादर को अपने सामान, आज भी करते वो लोग, चादर ऐसे डाल दिया या छत्तर डाल दिया और सीधे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। फरमाया इन लोगों के बारे में अल्लाह ने ये तारीफ की है, रिजालुल्लातुलही, ये मर्द है, ये मर्द है, औरतें नहीं, ये कौन है, मर्द है। लातुल ही, ये अगर तू मां का दूध पिया, मर्द आओ मेरे सामने, ये मर्द है जो अपने दुकान को, अपने काम को बंद करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। रिजालुल लातुल ही तिजारतुन, इसीलिए कयामत के दिन हदीस में आता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फरमाया फरिश्ता ऐलान करेगा कहां है वो लोग जो तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ते हैं, वो फलौंगते हुए अल्लाह के सामने आ जाएंगे। फिर ऐलान करेगा कहां है वो लोग जो अपने काम काज करते थे, हलाल कमाई जॉब सब, लेकिन नमाज का वक्त आता था फौरन नमाज की तरफ, वो फलां थे अल्लाह के सामने आ जाएंगे, अल्लाह के सामने। उसके बाद हिसाब किताब होगा, पहले इन लोगों को अर्श के साए में जगह मिल जाएगी, बाद में हिसाब किताब, रेकनिंग आफ्टर दैट, ये हदीस में है, समझ में बात आ रही है। इसलिए फरमाया वही काम सलाका, अल्लाह अकबर, फरमाया नमाज भी कायम करते हैं, जकात भी देते हैं, देखो कमाते जकात भी देते हैं, कितनी तारीफ की अल्लाह पाक ने उन लोगों की जो मस्जिद को आबाद करते हैं, मस्जिद को आबाद करते हैं। फरमाया खाफूना, इनके दिल में डर है कि अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा, उस दिन दिल उलट जाए, क्या मतलब, हदीस में है दिल यहां से आएगा यहां, दिल निकल कर आएगा यहां, न नीचे जाएगा न ऊपर आएगा, अटक जाएगा उस दिन बाज होंगे और आंखें पलट जाएगी, इतना डर लगेगा इंसान को। देखो स्कैच सो मच, उन लोगों को इसका डर है कि मुझे कयामत के दिन ऐसा अजाब ना हो, इसलिए वो नमाज पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम नमाज पढ़ते हैं। याद रखो नमाज कभी ना छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, नमाज जरूर पढ़ना। पहला सवाल नमाज का होगा, लियज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, फरमाए अल्लाह ताला उनको बदला देगा। आज आओ आओ मेरे घर में, तुम आते थे नमाज पढ़ने के, आओ चलो, क्या बदला है, ये जन्नत तुम्हारी, जन्नत की चीजें तुम्हारी, और क्या देगा अल्लाह ताला, वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, आओ अल्लाह का दीदार करो, वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, अल्लाह का दीदार करो। और क्या फरमाते अल्लाह, जो नमाज पढ़ेगा अपनी दुकान बंद करके, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर नमाज नहीं छोड़ता है, फरमाए वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, ओ रोजी तू कमाता है लेकिन काम पर अल्लाह के सामने आ गया, अल्लाह तुझे बेहिसाब रोजी अता फरमाएगा, तेरी रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरे रास्ते खोल देगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें पांच वक्त की नमाज बा जमात पढ़ने के अल्लाह में तौफीक नसीब फरमाए। आज का हमारा सबक हुआ आयत नंबर 36, 37 और 38 तक हमने तफसीर की, इंशाल्लाह फिर आगे हम तफसीर करेंगे। या रहमान या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या दय्यान या सुल्तान या कदीम एहसान, اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا। अल्लाह हमारे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं है जो तेरी दरबार में हम पेश करें। वो बुखारी शरीफ में है कि वो तीन आदमी थे जिन्होंने गार में बंद हो गए थे, वो मरने के करीब थे, उन्होंने अपने आमाल को पेश करके छुटकारा पा लिया। अल्लाह हम जहन्नम की आग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, کوئی ایسا اخلاص والا عمل نہیں ہے اللہ، بس یہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، تیرے قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اللہ، اسی کی تو جتنا بڑا اتنا تیرا قرآن بھی بڑا ہے، تیرے الفاظ بھی بڑے ہیں اللہ، اسی کی برکت سے اللہ ہماری آل اولاد کی اور ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما اللہ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی آل اولاد کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، گھروں پر جو لوگ ہماری مائیں اور بہنیں تفسیر سن رہی ہے پابندی کے ساتھ، اور مکسر کے ذریعے لوگ دنیا میں سن رہے ہیں، جہاں کہیں لوگ سن رہے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، سب کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، پانچ وقت کی نماز ادب کے ساتھ تیرے گھر میں ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرما، پختہ یقین نصیب فرما، استقامت علی الدین نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ دین کے دائی بنا، علماء ربانیین میں سے بنا، ہم سے لے کر تا قیامت ہماری نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا فرما، علماء ربانیین پیدا فرما، تیرے نیک بندے پیدا فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، تو ہمارا بن جا، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، وہ آسمان کو تھامنے والے اللہ، برسوں سے آسمان کو تھامنے والے اللہ، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں سکون برکتیں نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان، اس آیت کی تفسیر مسجد میں نور ملتا ہے، گھر میں اگر روم بنایا جائے نماز کے لیے وہاں نور ملتا ہے، خانقاہ بنائی جائے وہاں نور ملتا ہے، اللہ ہمیں ایسا نور ہمیں نصیب فرما، ہمارے دلوں میں نصیب فرما، ہماری آنکھوں میں نور نصیب فرما، ہمارے دماغ میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اور ہمارے گھروں کو منور فرما، ہماری اولادوں کو منور فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، اب یہ عباس بھائی دایا اور اسی طرح ان کے بھائی حسن بھائی دایا، ان کے چھوٹے بھائی کا جو انڈیا میں انتقال ہونا، ان کی مغفرت فرما، اللہ ان بھائیوں کو بہنوں کو سب کو صبر جمیل نصیب فرما، الہ العالمین جہاں جہاں لوگ انتقال کر چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہم سب کو جب تک باقی رکھے ایمان پر باقی رکھنا، اور جب ہماری موت آئی ایمان پر موت دے دینا، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آتے اللہ ان کو سالے رشتے نصیب فرما، ان کو سالے رشتے نصیب فرما، جو ماں اور باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے، اللہ انہیں سالے رشتے نصیب فرما، اللہ جن بچیوں کے اولاد نہیں ہوتی شادی ہونے کے بعد، اللہ انہیں نیک سالے اولاد نصیب فرما، جو اولاد والے ہیں ان کے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، یہ تیرے نیک بندے تفسیر میں بیٹھے ہیں ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما، وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔